पूज्य गुरुदेव श्री के पदार्पण से भरत क्षेत्र धन्य हुआ है। भरत क्षेत्र के वो सौभाग्यशाली जीव जिन्हों की पात्रता अल्प काल में मुक्त जाने के लिए तैयार हो चुकी थी, इसलिए गुरुदेव जैसे महापुरुष महाविदेश असंख्य अब्जो वर्ष तक भगवान की वाणी सुनकर जब कुनकुन आचार्य भगवान महाविदेह गए थे, तब कुनकुन आचार्य देव के भी प्रत्येक जिन्होंने दर्शन किए थे और वो कुनकुन आचार्य देव भरत क्षेत्र में आकर पोनूर हिल से जो पंच परमागम की रचना की, उसका हाथ खोलने वाले परम कृपालु पूज्य गुरुदेव श्री के सानिध्य में अनेक रत्न भंडार थे, उसमें से एक पूज्य बाबूजी जिन्होंने सर्वोत्कृष्ट विषय यानी कि सम्यक दर्शन का विषय एक सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। वस्तु कैसी है, किस तरह से उसका लक्ष्य होना चाहिए, पर्याय के अंदर में ध्रुव के प्रति समर्पणता जो होती है उनका स्वरूप क्या होता है, पर्याय जो द्रव्य में अहम करती है वो किस विधि से अहम करती है, और अहम करते ही जो सम्यक दर्शन का जन्म होता है, ये सम्यक दर्शन और उनका विषय इसके ऊपर में पूज्य बाबू जी का लेख है। सही में देखा जाए तो समग्र जिन्वागम के अंदर में प्रतिपादन की जो शैली है वो दो प्रकार से है, एक है पदार्थ की सिद्धि और दूसरी है प्रयोजन की सिद्धि। पदार्थ की सिद्धि माने प्रमाण वस्तु स्वरूप, द्रव्य पर्याय वस्तु स्वरूप कैसी है और अन्य पदार्थों से भिन्नता किस प्रकार से है, इनका विश्लेषण पदार्थ की सिद्धि में होता है। और इस पदार्थ में से यानी के प्रमाण वस्तु में से निश्चय को निकालकर नय को निकालकर द्रव्य दृष्टि किस तरह से हो, इसका प्रतिपादन जहाँ पे है वहाँ पे प्रयोजन की सिद्धि का विषय है। अब जीव ने बुद्धिपूर्वक पदार्थ की सिद्धि तो अनंत काल में अनंत बार समझी, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि बुद्धिपूर्वक भी विकल्पात्मक स्थिति के अंदर में भी जैसा स्वरूप है वैसा यथार्थ निर्णय तथा वास्तविक निर्णय जीव ने नहीं किया, और यदि उसकी बात जो की तो की थी तो अंतरंग के अंदर में हेतु ऐसे रहा कि ये द्रव्य दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है, इसलिए उसने द्रव्य दृष्टि करने का प्रयत्न किया, और ये द्रव्य दृष्टि का स्वरूप नहीं है। जिसके अंदर में द्रव्य के अलावा कुछ बसता ही नहीं है, मात्र मात्र और मात्र द्रव्य हूँ, ध्रुव हूँ, अपरिणामी निष्क्रिय चैतन्य तत्व हूँ, इसके अलावा जिसमें कुछ बसता ही नहीं है, ऐसा समर्पण का भाव निरपेक्षपने निष्प्रपने कोई भी अपेक्षा बिना जीव के परिणाम एक बार भी ऐसे हुए नहीं जिसके वजह से सम्यक दर्शन का जन्म नहीं आया। जैन दर्शन की एक अद्भुतता और अलौकिकता यह है कि ये अभिप्राय से चलने वाला मार्ग है। यदि आपके अभिप्राय के अंदर में मैं परमात्मा तत्व हूँ ये शत प्रतिशत बात है, तो परिणाम की योग्यता ही ऐसे प्रकार की होती है कि सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहता, और परिणाम के अंदर में सम्यक दर्शन हो उसलिए मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय अपन करते हैं, तो अभिप्राय पर्याय दृष्टि का होने से लाख प्रयत्न करोड़ प्रयत्न अनंत प्रयत्न करने के बावजूद भी सम्यक दर्शन का जन्म नहीं हो सकता। ये बात यथा सत्य जिस तरह से है उस तरह से भी एक बार समझी जाए तो आत्मा की अनुभूति का मार्ग जो पूज्य गुरुदेव श्री ने ज्ञानी धर्मात्माओं ने जिस तरह से प्रतिपादित किया है, आत्मा की अनुभूति के लिए किसी को परिश्रम नहीं करना। जैसे शिवशंकर भगवंत विराजते हैं वहाँ पे लाखों करोड़ों केवलियों विराजते हैं, असंख्य मुनिराजों विराजते हैं, उसी तरह से जिस युग में गुरुदेव जैसे पुरुष आवे और साथ में सैकड़ों सम्यक दृष्टि ना हो तो ये आश्चर्य की बात है। अपन विस्तार से आत्म तत्व की बात सुनते हैं लेकिन प्रयोजन भूत विषय पर नहीं आते हैं। और जितना भी विस्तार भेद प्रवेश की चर्चाएं हैं उसके अंदर में ही संतुष्ट होकर हम ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, जानने को ही मार्ग समझ कर रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। तो आज अपन सम्यक दर्शन और उसका विषय के संबंध में बाबूजी क्या कहते हैं उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी मेरी मुंजोन एक जगह पर है कि बाबूजी के एक एक शब्द इतने वजनदार है, वजनी है, और जिस पैमाने पे बात की गई है उसका यदि अपन पूरे का पूरा विश्लेषण करें तो उतना समय अपने पास में नहीं है। संक्षिप्त समय के अंदर में अपने को पूरी बात समझनी है तो उसके अंदर में बीच बीच में जो मूल मूल बात होगी उसको अपन लेंगे, और जो जानने वाले विषय वाली बात होगी या दृष्टांत वाली बात होगी उसको अपन कम करेंगे। अभी यहाँ पे बाबूजी कहते हैं कि दर्शन शब्द विविध मत मतांतर चाक्षुष ज्ञान सामान्य अवलोकन तथा श्रद्धा आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। दर्शन शब्द विविध मत मतांतर चाक्षुष ज्ञान सामान्य अवलोकन तथा श्रद्धा आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। सम्यक दर्शन के प्रकरण में दर्शन श्रद्धा के अर्थ में ग्राह्य होता है। सम्यक दर्शन के प्रकरण में दर्शन श्रद्धा के अर्थ में ग्राह्य होता है। श्रद्धा विश्वास दृष्टि प्रतीति रुचि आदि शब्द दर्शन के पर्यायांतर है। कौन कौन से शब्द? श्रद्धा विश्वास दृष्टि प्रतीति रुचि आदि शब्द दर्शन के पर्यायांतर है। श्रद्धा आत्मा की एक शक्ति है, उसकी पर्याय का विषय ध्रुव स्वतत्व है। अब श्रद्धा की पर्याय का स्वरूप क्या है? श्रद्धा की पर्याय का स्वरूप है सर्वार्पणता समर्पित करना। कभी श्रद्धा की पर्याय थोड़े द्रव्य पे और थोड़े पर पे झुकती हुई कभी नहीं पड़ती, क्योंकि उसका काम है अहम समर्पित करना। मैं हूँ, अब मैं हूँ के अंदर में चाहे तो वह कहे कि मैं शरीर हूँ तो ये सब कभी सब मिथ्यात्व है, और यह कहे कि मैं परमात्मा हूँ तो ये सब प्रतिशत ही होता है। इसके अंदर में 99% या 99.9% और 0.1% की कोई गुंजाइश नहीं है। श्रद्धा का विषय यानी कि अहम का स्वरूप एक ही होता है, दोपना नहीं होता। कोई ऐसा नहीं कहता मैं प्रकाश भी हूँ और मैं जयस भी हूँ, ऐसा कभी नहीं कहता बस मैं प्रकाश हूँ। उस तरह से मैं परमात्मा हूँ या मैं शरीर हूँ या मैं कर्मों का करता हूँ, इसलिए जो मैंपना है वो एक जगह पे होता है, दो जगह पे नहीं हो सकता। ज्ञान के अंदर में अनंत का जानना होता है, दो का जानना होता है, स्वपर का जानना होता है, लेकिन श्रद्धा के अंदर में अहम एक का होता है, चाहे वो पर में अहम करे चाहे वो स्व में अहम करे। अब ये कोई कहे कि मिथ्यात्व गलते 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 चल जाता है, ऐसी व्यवस्था होते हुए भी अनुभव के पहले की पर्याय मिथ्या ही कहलाती है, सम्यक नहीं कहलाती। उसकी विशेषता यह है कि जिस समय वो स्वभाव की ओर झुक जाए वो सम्यक दर्शन होता है। उसका काम है आत्मा का दर्शन करे या आत्मा का दर्शन न करे। उसका दो रूप नहीं होता, आस्ते आस्ते आत्मा का दर्शन करते चले जाए आत्मा के तरफ झुकते झुकते चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आत्मा हूँ या मैं आत्मा नहीं हूँ। तो इस संदर्भ में बाबू जी क्या कहते, थोड़ा देखते अपन। सम्यक दर्शन है श्रद्धा शक्ति की निर्मिकल निर्मल निर्विकार दशा है। सही दृष्टि विश्वासी का सही अवलोकन करती है और उनमें से अपने उपादेय तत्व को चुनकर उसी का आश्रय करती है। सम्यक दर्शन श्रद्धा शक्ति की निर्मल निर्विकार पर्याय है। सही दृष्टि विश्वासी मन श्रद्धावान का सही अवलोकन करती है और उनमें से अपने उपादेय तत्व को चुनकर उसी का आश्रय करती है। उसका काम है आश्रय करना। आश्रय करना माने क्या, मैं हूँ बस, उसका नाम आश्रय है और कुछ नहीं होता उसके अंदर में। मैं हूँ इतना विकल बुद्धि जिसके अंदर में होता नहीं। अब इसका भी विश्लेषण बाबू जी अद्भुत तरीके से इस लेख में करते हैं। इसके विपरीत गलत दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि स्व से सर्वथा भिन्न विश्व के पदार्थों के साथ एकत्व अथवा कारण कार्य भाव की स्थापना करती है। इसके विपरीत गलत दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि स्व से सर्वथा भिन्न विश्व के पदार्थों के साथ एकत्व अथवा कारण कार्य भाव की स्थापना करती है। जब तक ये पर्याय यह कहे कि मेरा विषय भगवान आत्मा है तब तक एक गलत पर्याय है, मिथ्या पर्याय। आपको इनकी सीमा रेखा समझनी होगी। पर्याय जब तक यह कहे कि मेरा विषय भगवान आत्मा है, मेरे को भगवान आत्मा की दृष्टि करते ही सम्यक दर्शन होता है, तो सम्यक दर्शन का विषय भगवान आत्मा नहीं होता। मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव निष्क्रिय चैतन्य भगवान हूँ, अपरिणामी परमात्मा हूँ, ऐसा स्वरूप श्रद्धा का होता है। वो जिसको विषय करती है वो विषय और विषयवान भिन्न नहीं होता। वो श्रद्धेय के अंदर में श्रद्धा नहीं बचती। जिस श्रद्धेय के अंदर में श्रद्धा बच जाए उसको श्रद्धा नहीं कहते, उसको मिथ्या श्रद्धा कहते हैं। जिसके अंदर में श्रद्धेय श्रद्धेय और मैं श्रद्धेय मैं परमात्मा इतना ही बचे, इसके अलावा कुछ नहीं बचे, उसका नाम श्रद्धा है। क्योंकि श्रद्धेय के अंदर में श्रद्धा को रहने की जगह नहीं होती है। श्रद्धेय का स्वरूप ही ऐसा है, इसके अंदर वो मिलावट जैसे कि श्रद्धेय हमेशा पूर्ण होता है और जो स्वभाव से पूर्ण है उसके साथ किसको मिलाया जाए तो पूर्ण कहलाएगा, तब तो वो अपूर्ण कहा जाएगा। यदि पूर्ण के साथ में किसी को मिलाया जाए तो वो अपूर्ण कहलाएगा और श्रद्धेय तत्व कभी अपूर्ण नहीं होता। सम्यक दर्शन का जो विषय जो है वो परिपूर्ण नायक तत्व है, परिपूर्ण चैतन्य सत्ता है। सम्यक दर्शन अथवा सही दृष्टि का अर्थ यह नहीं है कि अपने से भिन्न शरीर आदि पर पदार्थों को पर कर दिया जाए। शरीर को पर कह दे, कर्म को पर कह दे, राग को पर कह दे, चेतन को चेतन अथवा जड़ को जड़ कह दिया जाए और अपने अबद्ध अस्पष्ट अस्थायी स्वभाव का चिंतन कर लिया जाए, इसका नाम सही दृष्टि नहीं। चेतन को चेतन, जड़ को जड़ और अपने अबद्ध अस्पष्ट अस्थायी स्वभाव का चिंतन कर ले। हमारा तो बहुत चिंतन चलता है स्वभाव की ओर, इसका नाम सही दृष्टि नहीं है। क्योंकि चिंतन भी कटाई है, चिंतन चिंता है, चिंता चिता है। जब तक ऐसा न लगे तब तक विकल्प की परिपाटी बंद नहीं होती। अब यदि मैं स्वभाव से निर्विकल वस्तु हूँ तो स्वभाव से निर्विकल वस्तु हूँ, इस विकल्प के अंदर में निर्विकल वस्तु नहीं बचती। चिंतन की धारा के अंदर में, विकल्प की धारा के अंदर में वो कितना ही चिंतन कर ले, लेकिन उसको भगवान आत्मा तक पहुंचा नहीं जा सकता। ये बात कहते हैं अभद्र अस्त्य अक्षय स्वभाव का चिंतन कर लिया जाए, परंतु वरन स्वपर के बीच जो मौलिक भेद विद्यमान है, परंतु ऐसा नहीं करके चिंतन के तक सीमित नहीं रहकर स्व और पर के बीच में जो मौलिक भेद विद्यमान है उसकी सर्वांगीण सत्कार्य स्वीकृति पूर्वक स्व तत्व की निर्विकल्प अनुभूति में सम्यक दर्शन का अवतरण होता है। सम्यक दर्शन का जन्म कहाँ होता है? निर्विकल्प अनुभूति में। निर्विकल्प अनुभूति कहाँ होती है? स्व पर के भेद विज्ञान पूर्वक स्व के अंदर में, मैंने यदि पर बने, पर बने या पर पदार्थ की चर्चा नहीं है, पर माने पर्याय, पर्याय से भी भिन्न पर्याय की सत्कार्य शक्ति, के पर्याय अपनी योग्यता से, अपने सत्कारक से, अपने स्वच्छपने से, अपने अहेतुकपने से, अपने क्रमबद्धपने से परिणाम की है, उस परिणाम से भी हटकर उस पर्याय को भी पर समझ के त्रिकाली ध्रुवात्मा को स्व जानते हुए, स्व मानते हुए जो निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस निर्विकल्प अनुभूति में सम्यक दर्शन का जन्म होता है। अब जो भेद विद्यमान है उसको भेद करना नहीं है, स्वपर का भेद विद्यमान है, जिसे शब्द क्या लिखा स्वपर बीच जो मौलिक भेद विद्यमान है, अब जो भेद है उसको भेद करना नहीं है। भेद तो है, दो द्रव्य के बीच में भेद है, दो पदार्थों के बीच में भेद है, द्रव्य पर्याय के बीच में भेद है, वो कभी भी अभेद नहीं होते। निर्विकल्प अनुभूति के अंदर में भी क्षणिक नया उत्पन्न होता हुआ अभेद है, वो भी विकल्प नहीं होने की वजह से, लेकिन सही में दोनों अभेद नहीं हो जाते, भेद विकल्प नहीं है, उसलिए वो अभेद कहे जाते हैं, लेकिन वो भी क्षणिक नया उत्पन्न होता हुआ अभेद है। इसके बारे में ये कहते हैं कि निर्विकल्प अनुभूति में सम्यक दर्शन का जन्म होता है। आत्मा के बारे में चिंतन कर ले, पर को पर जान ले, स्व को स्व जान ले, और उसका चिंतन चलता रहे अक्षय सत्ता का, उसमें आत्मा की अनुभूति नहीं होती। बात अत्यंत स्पष्ट है, कहीं किंतु परंतु की कोई जगह नहीं है। यदि मैं परमात्मा हूँ तो 100% परमात्मा हूँ। अब पर्याय दृष्टि करे या न करे उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो ऐसी वस्तु हूँ जिसमें दृष्टि नहीं कमाती। और पर्याय द्रव्य की दृष्टि करे, मैंने पर्याय की अमूर्ति को द्रव्य की अमूर्ति, अभी अमूर्तिक पर्याय अमूर्तिक द्रव्य की दृष्टि किस तरह से कर सकती है? मैं हूँ इसके अलावा और कोई रूप हो ही नहीं सकता। और क्या कहते बाबू जी, देखिए ज्ञान में है उपाधि प्रवृत्ति, यद्यपि सच्ची श्रद्धा से पूर्व, यद्यपि सच्ची श्रद्धा से पूर्व प्रवर्तित होने वाला ज्ञान भी सच्ची श्रद्धा के पूर्व प्रवर्तित होने वाला ज्ञान भी स्वपर के भिन्नत्व का प्रतिपादन करता है। ज्ञान के अंदर में चलता है कि मैं परमात्मा हूँ, राग से भिन्न हूँ, कर्म से भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, एक समय की पर्याय से भिन्न हूँ, प्रमत अप्रमत से भिन्न हूँ, ऐसे ज्ञान भी भिन्नत्व का प्रतिपादन करता है, लेकिन ये श्रद्धा का स्वरूप नहीं। जहाँ पे अपनी नापती चले मैं ज्ञायक हूँ और परिणाम से रहित हूँ, ये श्रद्धा का स्वरूप नहीं हो सकता। उसके अंदर मैं हूँ के अलावा कुछ बच नहीं सकता। अस्थि और नास्ति एक ज्ञान के अंदर में चलता है, ज्ञान के भेद विकल्प है। अस्थि के अंदर में मात्र अस्थि ही होती है। यद्यपि सच्ची श्रद्धा से पूर्व प्रवर्तित होने वाला ज्ञान भी स्वपर के भिन्नत्व का प्रतिपादन करता है, किंतु देहादि से भिन्न उपाधि स्वरूप निज शुद्ध जीवत्व यदि अनुभूति में न आए तो ज्ञान के द्वारा भिन्नत्व प्रतिपादन का कोई मूल्य नहीं। विकल्पों के अंदर में कितना ही विकल्प चलता है, स्थिरता के अंदर में दो चार पांच घंटा अकेले में बैठ जाए और मैं इससे भिन्न हूँ, इससे भिन्न हूँ, ये हूँ और ये नहीं हूँ, ये हूँ और ये नहीं हूँ, ऐसे कितना भी चलता है, लेकिन यदि निर्विकल्प अनुभूति न हुई, आनंद का रसास्वादन नहीं हुआ, निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं हुआ, तो इस भिन्नत्व प्रतिपादन का कोई मूल्य नहीं है। भले ही उत्कृष्ट भाव कहलाएगा, और यदि आप इसकी चर्चा भी करोगे तो जगत में इसका सब वाहवाह भी करेंगे, यदि भगवान आत्मा के अलावा और कुछ कहता ही नहीं, सिर्फ बोलता ही नहीं, लेकिन इसका कोई कीमत नहीं है। क्या लिखा, आए तो ज्ञान के द्वारा भिन्नत्व प्रतिपादन का कोई मूल्य नहीं, सब कुछ मूल्य तो दो, कोई मूल्य नहीं। इसलिए दृष्टि सम्यक होने पर ही ज्ञान में सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। दृष्टि सही ही तो ज्ञान सम्यक होता है। समयसार परमागम यह कहता है कि ज्ञान जैसा जानता है श्रद्धा वैसा ही मानता है। ये एक सिद्धांत। एक दूसरा सिद्धांत, दृष्टि सम्यक होने पर ही ज्ञान सम्यक्त, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसी दृष्टि नहीं हुई तो ज्ञान में चलने वाले विकल्प की कोई कीमत नहीं है। और दृष्टि के सम्यक्त्व के अभाव में, दृष्टि के सम्यक्त्व के अभाव में ज्ञान उपाधि तत्व का विज्ञापन तो करता है, दृष्टि के सम्यक्त्व के अभाव में ज्ञान उपादेय तत्व का, देखिए वही तत्व का विज्ञापन नहीं करता, ज्ञान भी उपादेय तत्व का विज्ञापन करता है, किंतु ज्ञान में उस शुद्धत्व की प्रसिद्धि नहीं होने वाली। यदि निज शुद्धत्व तत्व जो है उसकी यदि प्रसिद्धि नहीं हुई, सिद्धि तो है लेकिन प्रसिद्धि नहीं हुई, अनुभूति नहीं हुई, स्वसंवेदन नहीं हुआ, निर्विकलता नहीं हुई, अतः अनुभूति शून्य उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। बोध भी वैसे मिलेंगे जो है कहते हैं कि हम दो चार पांच घंटा स्वाध्याय करते हैं, दो चार घंटा एकांत में बैठते हैं, हमारा चिंतन एक शुद्धात्मा के अलावा कुछ नहीं चलता, भेद ज्ञान का विकल्प चलते रहता है। लेकिन जितना भेद उतना मन, जितना अभेद उतना ज्ञान। आपको जो ज्ञान का विकल्प कहा जाता है वो एक नई पक्ष है, लेकिन उस नई पक्ष के अंदर में अस्ति और नास्ति की यदि दोनों बात चलती है तो यह निश्चय नहीं का पक्ष नहीं कहलाता। निश्चय नय का पक्ष उसे कहते हैं, शुद्ध नय का पक्ष उसे कहते हैं जो नया कुछ वस्तु के अलावा और कुछ प्रतिपादन ही नहीं करते। मैं परमात्मा मात्र वस्तु मैं हूँ, इसके अलावा कुछ प्रतिपादन ही नहीं करते और उसके अंदर में तत्काल अनुभूति हो जाए। मैं हूँ कहते मैं चले जा, तब अनुभूति होने पर आगे वाली पर्याय को शुद्ध नय का पक्ष कहा जाता है। इसलिए आचार्य भगवान ने समय साथी ग्यारहवीं गाथा के अंदर में अपूर्व निश्चय नय का पक्ष एक बार भी नहीं आया ऐसा प्रतिपादन किया। अपूर्व माने मैं परमात्मा हूँ ऐसा कहे तो सुपरवट कर जाएगा, मैं परमात्मा हूँ तो परमात्मा का विकल्प क्यों है, मैं प्रकाश हूँ तो प्रकाश का विकल्प कितना चलता दिन से, और किस समय भूल जाता हूँ कि मैं प्रकाश हूँ। श्रद्धा का स्वरूप ऐसा है जिसके अंदर में श्रद्धा ही के अलावा कुछ बचता ही नहीं। श्रद्धा को खड़े रहने की जगह नहीं होती श्रद्धा में, वो बात बाबू जी कहते हैं मिथ्या ज्ञान की संज्ञा से अभिहित किया जाता है, अभिहित मन पहचानने में आता है, फिर वह ज्ञान लोक दृष्टि से विस्तृत होने के कारण भले ही आदरणीय हो किससे लोक दृष्टि के लोक में तो ऐसी बात चलती नहीं है। अब वहां पे बात चले तो वाहवा होती इस बात की, आदरणीय कही जाती है, किंतु प्रयोजनभूत शुद्ध स्वतत्व और राजा के विचार तथा देहादि जड़ तत्वों में ग्रंथि भेद करने में असमर्थ होने के कारण प्रयोजनभूत शुद्ध स्वतत्व, तो प्रयोजनभूत शुद्ध स्वतत्व ही है, ये भी है और वो भी है ऐसा नहीं है, शुद्ध तत्व ही प्रयोजनभूत है और उसके अलावा राजा के विकास तथा ब्याह भी जड़ तत्व में ग्रंथि भेद करने में असमर्थ होने के कारण पर को ही स्वस्थान में सेवन करता हुआ, उसका स्व कौन सा है, पर ही है, पर्याय से रहित, पर्याय से रहित, पर्याय से रहित, पर्याय से रहित, इसने अपने आप को तो पर्याय से सहित माना है, तो याद ही पर्याय को करता है। आज तक दो और दो पांच शिक्षक के पास नहीं आया तो मैंने क्या कहा था, दो और दो सब अपने पास, मैंने पांच कहा था, पांच नहीं कहा था, पांच कहा था, पांच नहीं कहा था, तो बोलिए इसके अंदर वो किसको याद कर रहा है, इसका नाम मिथ्या तो है, मैं पर्याय से रही, प्रभता प्रमत से रही, उसकी दृष्टि तो पर्याय के ऊपर झगी हुई है, प्रयोजन भूत शुद्ध तत्व के ऊपर आया ही नहीं है। ज्ञायक परिपूर्ण तत्व हूँ पर्याय से रही हूँ, परिपूर्ण तत्व हूँ पर्याय से रही हूँ, उसने अपने आप को पर्याय से सही से ही माना है, कि दृष्टि नहीं आती पर्याय से, पर यदि पर्याय से रही तो मान लिया तो दृष्टि द्रव्य तक जम नहीं चाहिए, अभी एक धंधा भी होगा सहज, उसके लिए भी सहज का धंधा है, लेकिन त्रिकाली ध्रुव सहज स्वभाव जो है उस स्वस्थान से वो आना चाहिए, सेवन करता हुआ अपने योग्य पर अर्थात निराकुल सुख का उत्पादन नहीं करता, अतः उस अध्याय की सच्चा के साथ ही ज्ञान में सच्चाई उत्पन्न होती है, श्रद्धा की सच्चाई, श्रद्धा यानी श्रद्धा में नेपना होते ही ज्ञान सच्चा होता है, ज्ञान शून्य होता है, क्योंकि शुरू में जब पढ़ना शुरू करता है तब भले ज्ञान आगे रहता है श्रद्धा उसको फॉलो करता है, लेकिन एक जगह आने पर श्रद्धा आंख बंद करती है और कुदका मारती है, घुटका मारती है, और देखिए जब कहीं के ऊपर से कूदना होता है उसके अंदर में आंख खुली नहीं होती, श्रद्धा अंधी है, वो जहां से भी अपनापन करता है सब प्रतिशत करती है, निर्विकल श्रद्धा, उसको सोचना नहीं है कि ये मैं हूँ कि ये मैं, ये मैं हूँ, ये इसकी समर्पणता है, फिर स्व हो या पर, और पर को उसने पर स्थान में नहीं रखा, पर को उसने मैं हूँ मतलब स्व स्थान में रखा, पर उसके लिए स्व है, श्रद्धा के लोक में पर नाम की कोई चीज नहीं होती, श्रद्धा के लोक में जो कुछ भी होता है वो होता है, श्रद्धा और ज्ञान शक्ति के कार्यों की उनके स्व लक्षणों से भिन्न पहचान न होने के कारण ज्ञान के मैं शुद्ध और निर्विकार हूँ इत्यादि विकल्प को ही प्राय सम्यक दर्शन मानने की भूल की जाती है। जिसका चिंतन मैं शुद्ध हूँ, निर्विकार हूँ, परिपूर्ण ज्ञाय तत्व हूँ, ऐसा ही विकल्पों को प्राय सम्यक दर्शन मानने की भूल की जाती है। किंतु मैं शुद्ध ज्ञान तत्व हूँ, इस विकल्प की पुनरावृत्ति को वास्तव में सम्यक दर्शन कहते ही नहीं। मैं शुद्ध ज्ञान तत्व हूँ, इस विकल्प की पुनरावृत्ति, विकल्प के ऊपर विकल्प, विकल्प के ऊपर विकल्प, कैसा विकल्प? मैं शुद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, विकल्प की पुनरावृत्ति जो है उसको वास्तव में सम्यक दर्शन कहते ही नहीं है। वरन शुद्ध ज्ञायक तत्व की अखंड धारावाहिक निर्विकल्प प्रतीति को सम्यक दर्शन कहते हैं। शुद्ध ज्ञाय तत्व की अखंड धारावाहिक निर्विकल प्रतीति को, धारावाहिक निर्विकल प्रतीति होती है। मैं परमात्मा हूँ ऐसा उनकी श्रद्धा से छूटता ही नहीं है। विकल्प में ज्ञाय तत्व का विचार तो है किंतु तत्व का स्पर्श नहीं है। ज्ञायक तत्व का विचार तो चलता है लेकिन तत्व का स्पर्श नहीं है। यदि मैं शुद्ध ज्ञायक तत्व हूँ, ज्ञान के इस विकल्प को सम्यक दर्शन मान लिया जाए, मैं शुद्ध ज्ञायक तत्व हूँ, ज्ञान के इस विकल्प को सम्यक दर्शन मान लिया जाए, तो ज्ञान सदा इस विकल्प में तो रहता ही नहीं। फिर जिस समय ज्ञान आत्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थों को विषय करेगा, उस समय सम्यक दर्शन का अभाव स्वीकार करना होगा। जिस समय यह विकल्प, इस विकल्प को आपने सम्यक दर्शन कहा ना, जब यह विकल्प नहीं है तो दूसरा विकल्प चलेगा, और दूसरा विकल्प चलेगा तो सम्यक दर्शन का अभाव चलेगा। उस समय सम्यक दर्शन का अभाव स्वीकार करना पड़ेगा, किंतु ऐसा नहीं है। ज्ञान जिस समय पर तत्व को विषय कर रहा हो, उस समय भी श्रद्धा का सद्भाव रहता है। जिसको सम्यक दर्शन हुआ, उनके ज्ञान के अंदर में अन्य विषयों का विकल्प चलता हो, उस समय भी श्रद्धा का सद्भाव होता है। और श्रद्धा की परिणति में, श्रद्धा की प्रतीति में श्रद्धा कभी छूटता ही नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को निंद्रा में अपने नाम तथा जाति ज्ञान के विषय न रहने पर भी उनकी अखंड प्रतीति बनी ही रहती है, प्रतीति कभी छूटती नहीं है। यह प्रतीति जागृत दशा में भी अक्सर में रहती है। जागृत दशा में विभिन्न व्यापार करते हुए भी उस व्यक्ति को नाम तथा जाति विषय प्रतीति की अखंड धारा साथ ही प्रवाहित होती रहती है। विकल्प कहीं चलता हो, व्यापार आदि के परिणाम हो, लेकिन उस समय भी मैं यह हूँ ऐसा अक्सर धारा चलती रहती है, प्रतीति चलती रहती है। यह अखंड प्रतीति ज्ञान की पर्याय तो नहीं है। ज्ञान में तो और कुछ विकल्प चल रहा है। अतः यह ज्ञान अतिरिक्त किसी अन्य शक्ति की ही पर्याय है और उसे ही श्रद्धा कहते हैं। और भी स्पष्टीकरण श्रद्धा के मूलभूत विषय में जाने से पहले बाबूजी ने जितने भी जिनवाणी के अंदर में व्यवहार शब्द प्रयोग किया है सम्यक दर्शन के आगे, व्यवहार श्रद्धा अथवा व्यवहार सम्यक दर्शन किस किस जगह पे किस किस चीज को कहा है, उसका भी निरूपण करके, उसकी स्पष्टता करके उस बात का भी छेद उड़ाया है। क्या कहते हैं, देखिए, ज्ञान की भांति सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा और विकल्प की सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसा जिनवाणी में आता है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन लेकिन कहते हैं। श्रीमद जी ने भी इस बात को ली है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की समर्पणता को व्यवहार सम्यक दर्शन कहने में आता है। किंतु वह चरित्र की सुभ्रात पर्याय है। देव शास्त्र गुरु को विषय करने वाला चरित्र विकारी होता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु को विषय करने का अर्थ ही कारण कार्य भाव पूर्वक उनकी उपाधि कला को स्वीकार करना, सच्ची श्रद्धा या समय दर्शन, शुद्ध त्रैकालिक पदार्थ अथवा पर निर्देश स्वजी तत्व को ही विषय करती है, अन्यथा यह मिथ्या होती है। श्रद्धा का स्वरूप ही ऐसा है, कैसा है? सच्चे देव शास्त्र गुरु को विषय करने का अर्थ ही कारण कार्य भाव पूर्वक उनकी उपादेयता को स्वीकार करना है, एक बार। दूसरी बार, सच्ची श्रद्धा या सम्यक दर्शन, शुद्ध त्रैकालिक पदार्थ अर्थात पर निर्देश स्वजीव तत्व को ही विषय करती है, अन्यथा यह निष्ठा होती है। जो पर्याय पर निर्देश त्रिकालिक शुद्ध पदार्थ के अलावा कहीं के भी रुके तो मिथ्या, उसका विशेष शुद्ध त्रिकालिक जीव तत्व होता है, पूरा पर निर्देश होता, उसको पर की अपेक्षा नहीं होती। उससे परिपूर्ण है, पर्याय से रही के उससे परिपूर्ण नहीं है, प्रमत प्रमत से रही से उससे परिपूर्ण नहीं है, अपने स्वभाव को स्वयं सिद्ध है, स्वयं परिपूर्ण है, वो स्वयं स्वयं से है, वो अनादि अनंत स्वयं से सिद्ध है, वो उसकी कोई शुरुआत नहीं है, उसके अनादि ऐसा नहीं है, तो स्वभाव से अनादि है, उसका कभी नाश नहीं होता, उसके अनंत नहीं है, वो स्वभाव से अनंत है। माने पर्याय का जैसे उत्पाद होता, पर्याय का विनाश होता, इसका उत्पाद नहीं होता, विनाश नहीं होता, उसलिए अनादि अनंत ऐसा नहीं है, मतलब उस रूप नहीं होता उसलिए परिपूर्ण ऐसा नहीं है, अपने स्वभाव से अनादि है, अपने स्वभाव से अनंत है, अनेक रूप नहीं होता उसलिए एक रूप ऐसा नहीं है, स्वभाव से एक रूप है, खंड रूप नहीं होता उसलिए अखंड ऐसा नहीं है, स्वभाव से अखंड है, भेद रूप नहीं होता उसलिए अभेद ऐसा नहीं है, स्वभाव से अभेद है, इनका स्वरूप ही ऐसा है। सकल निरावरण अखंड एक प्रत्येक प्रतिभाव में हरिनश्वर, ये इनका स्वभाव है। दर्शन ज्ञान चरित्र खंड ज्ञान है, स्वभाव के अंदर में बस स्वभाव रखता है, शुद्ध स्वतत्व बस और कुछ नहीं, किसी की भी अपेक्षा पर से निरपेक्ष पर क्यों हो अपेक्षा, पर्याय भी तो स्वतत्व है, उसको भी द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, पर्याय में द्रव्य के कारण अनुभूति नहीं होती है, पर्याय एक समय का सत्य है, वो अपनी योग्यता से सम्यक रूप परिणमती है, अगर मिथ्या रूप अनाधिकाल से परिणमती है तो उसका कारण पर पदार्थ नहीं है, मैं पर हूँ ऐसा हो तो मैं स्वपना पर मैं स्वपना घोषित करती हुई तो मैं रूप परिणमती है, वो उसका मित्व है। तो वास्तविक वस्तु व्यवस्था को यदि देखा जाए समझा जाए तो बात अत्यंत स्पष्ट है कि श्रद्धा का काम है शुद्ध त्रिकालिक पदार्थ जो कि पर निरपेक्ष है उसके अंदर में जम जाना, रम जाना, अन्यथा यह मिथ्या होती है। स्वभाव से जो परिपूर्ण शुद्ध है वो स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध है, तो पर्याय पर्याय से अपने में शुद्ध है, मैंने एक समय की उसकी जो योग्यता अशुद्ध रूप परिणमने की भी जो योग्यता उसका कारण कोई नहीं है विश्व में, तो फिर सम्यक रूप परिणमे तो उसका कारण द्रव्य कैसे हो सकता है, तो द्रव्य तो स्वभाव का कारण परमात्मा है, और कारण परमात्मा किसी का कारण नहीं बन सकता, अब पर्याय कारण बनाती है वो अलग बात, पर्याय द्रव्य को कारण बनाए तो वो पर्याय की अपनी स्वतंत्रता है, स्वाधीनता, मैं द्रव्य हूँ ऐसा घोषित करती है तो पर्याय की स्वाधीनता है, लेकिन द्रव्य उसका कभी कारण नहीं बनता, पर यदि द्रव्य उसका कारण बन जाए तो नित्य कर्ता का दोष है, जो नित्य करता है तो वस्तु की व्यवस्था अत्यंत सुंदर है, अत्यंत अद्भुत है, अलौकिक है। जहाँ से जैसी वस्तु स्पष्ट है, गुरुदेव ने, ज्ञानियों ने बात स्पष्ट की है, अपन उस भगवान आत्मा को, शुद्ध तत्व को शुद्ध तत्व से देखे, उसमें बैठ कर देखे, पर्याय में बैठ कर न देखे। पर्याय में बैठ कर पर्याय पर है, तो पर में बैठ कर स्व का दर्शन नहीं हो सकता, और स्व में बैठ जाए तो दर्शन ही दर्शन है। ऐसा अद्भुत अलौकिक अपना वैभव जैसा है, जिस तरह से कहा गया है आचार्य भगवंतों ने, गुरुदेव ने, ज्ञानियों ने बताया, वहाँ से शुद्ध तत्व को देखते हुए सभी शादी अनंत काल शुद्ध तत्व में रह जाए, इसी मंगल भावना के साथ।